संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। भक्तमाल सुंदर जैसा ग्रंथ नहीं है और हरी सो वस्तु नहीं है, प्राप्त करने योग्य है हरी जैसी वस्तु नहीं है, गुरुदेव जैसे सज्जन नहीं है और प्रेम पंथ जैसा कोई पंथ नहीं है। तो भक्तमाल की जय, श्री राधे राधे। आज भक्तमाल श्रृंखला में कथा करते हैं श्री मदालसा जी की। मदालसा माँ कहते हैं कि मदालसा जैसी माँ कोई नहीं हुई है अभी तक, जिन्होंने अपने ही पुत्रों को संन्यास दिलाया, भगवत प्राप्ति मार्ग पर चलाया। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उनके पुत्र भगवत प्राप्ति की ओर चले। तो कथा शुरू करते हैं। विश्वावसु गंधर्व राज थे, गंधर्व राज की पुत्री थी मदालसा जी। बहुत सुंदरी थी और इनकी सुंदरता पर गंधर्व क्या देवता तक मोहित हो जाए, इतनी सुंदर मदालसा जी जो गंधर्व राजकुमारी थी। तो एक बार पाताल केतु एक राक्षस, वो घूमते हुए इनकी नगर में आया, गंधर्व राज के नगर में आया और इनको अपहरण कर ले गया अपने लोग पाताल लोक में। वहाँ पर इन्हें लगा कि अब मेरा मरना तय है, क्योंकि वो इनसे विवाह करना चाहता था और ये बिल्कुल तैयार नहीं थी पाताल केतु के साथ विवाह करने के लिए। पाताल केतु वरदान प्राप्त था, उसने बहुत सारे देवताओं को ऋषियों को तंग किया हुआ था, परेशान करता था। जब भी कोई यज्ञ हवन करता था उनके हवन को यज्ञ को वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया करता था। देवता भी लोग परेशान थे, ऋषि लोग परेशान थे, उससे कोई उसे मार नहीं सकता था। तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि गालव जी पृथ्वी पर उस समय ऋतध्वज जी के पिताजी राज्य कर रहे थे, तो वो ऋतध्वज जी के यहाँ जाता है और ऋतध्वज जी को एक अश्व देकर कहता है कि आप ही पाताल केतु को मार सकते हैं, तो ये अश्व ग्रहण कीजिए। मारने को तो हम भी मार सकते हैं उसको, लेकिन हमारी तपस्या से जितना हमने तप किया है वो सारा भंग हो जाएगा अगर हमने उसको अपनी तपस्या के बल पर मारा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी तपस्या का सारा बल भंग हो जाए। तो ऋतध्वज कहते हैं कि ठीक है। तो इस तरह ऋतध्वज वो अश्व ले, और वो अश्व इस तरह का था कि वो किसी भी लोक में जा सकता था, तो इसीलिए गालव जी ने वो अश्व ऋतध्वज को दिया। ऋतध्वज जी गालव जी के आश्रम पर आ गए। आश्रम पर आए, ये अपना यज्ञ और जो भी संध्या उपासना करने लगे। उसी समय पाताल केतु प्रकट हुआ और वो इनका यज्ञ ध्वंस करने लगा। तो अश्व पर आरूढ़ होकर इन्होंने उसका पीछा किया ऋतध्वज जी ने, और इन पर बाण छोड़ना शुरू किए। बाणों की वर्षा वो कर रहे थे, लेकिन वो कई योजन तक भागता रहा है और ये उसके पीछे पीछे लगे रहे। भागते भागते एक बहुत बड़ा अंधकूप आया और वो उसमें प्रवेश कर गया। घोड़ा लेकर अंधकूप में ये भी प्रवेश कर गए ऋतध्वज जी। ऋतध्वज जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो बहुत लंबी यात्रा करने के बाद उस अंधकार कूप में वो निकले पाताल लोक में। वो भी पाताल लोक में कहीं गायब हो गया। ये पाताल लोक में जहां निकले वहां इन्हें दिखाई दी मदालसा की सखी मंडला। अच्छा, मंडला किसी भी लोक में यात्रा करती रहती थी, वो भी एक गंधर्व कुमारी थी। तो वो उसने जब यात्रा करते करते वो पाताल लोक में पहुंची थी, तो उसने भी अपनी जो सखी थी मदालसा उसको देखा, तो वो यहीं पे रह गई थी उसके पास कि मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इधर पाताल केतु ने जब मदालसा से विवाह करने के लिए एक तिथि निश्चित की कि इस तिथि को विवाह करेंगे, तो वो आत्महत्या करना चाह रही थी। पर उसी समय कामधेनु जो गाय हैं वो आई और उन्होंने इनको समझाया कि नहीं, कोई है जो शीघ्र ही इस पाताल केतु का वध करेगा, इसे बाणों से जो भी बेंध देगा पहली बार वही तेरा पति होगा। तो अभी मदालसा ने अंदर जाते हुए पाताल केतु को देखा जो बाणों से बेंध चुका था। पाताल केतु को अभी इसने जाते हुए देखा, लेकिन ऋतध्वज का दर्शन मदालसा ने नहीं किया। ऋतध्वज किसको मिले? मंडला को बाहर। तो मंडला ने देखा कि इतना सुंदर राजकुमार, आप कौन है? उसने बताया कि अभी अभी पाताल केतु गया है इधर से, मैं उसका पीछा करते हुए आया हूँ, आप कौन है? उसने बताया, मैं पृथ्वी का राजकुमार हूँ और इसे मारना चाहता हूँ। मंडला खुश हुई, वो समझ गई कि यही है वो राजकुमार जिससे मेरी सखी मदालसा का विवाह होना है। राजकुमार जल्दी में अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश किया तो सामने ही उसने मदालसा को देखा। मदालसा का रूप देखकर वो मोहित हो गया, इतनी सुंदर राजकुमारी। और मदालसा ने रित ध्वज को देखा तो वो भी मोहित हो गए। मोहित हो गई तो उसके मस्तिष्क में चलने लगा कि मुझे कामधेनु ने कहा था कि जो इसको बाणों से भेद करेगा वही मेरा पति होगा, लेकिन मेरा मन तो इस पे आसक्त हो गया है। वो इस उधेड़बुन में मूर्छित हो गई। इधर मंडला आई, मंडला ने देखा ये मूर्छित हो गई है, तो ऋतध्वज ने कारण पूछा कि ये क्यों मूर्छित हुई है। उसने कहा कि अवश्य ही इसके मन में ये चला होगा कि मेरा पति होगा जो पाताल केतु को मारेगा, पर ये आपको देखकर मोहित हो गई। इसे नहीं पता कि आप ही पाताल केतु को मारने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए आप ही पति होंगे इसके। तो ऋतध्वज प्रसन्न हुए। खैर, मदालसा को होश में लाया गया, और जब मदालसा होश में आई तो उन्होंने सारी बात पता चली और वो विवाह के लिए राजी हो गई। दोनों का खुशी खुशी विवाह करने के लिए राजी हुए। इसी बीच पाताल केतु आया। पाताल केतु से ऋतध्वज का युद्ध हुआ और पाताल केतु को ऋतध्वज ने मार दिया। युद्ध में बहुत सारे उसके राक्षसों को मारकर मदालसा को लेके ये पृथ्वीलोक आ गए। तो उसी अश्व पर सवार होकर ये अपने पिताजी के पास गए और इन्होंने यहाँ सविधि विवाह किया। विवाह के पश्चात दोनों बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। पाताल केतु का भाई था छोटा ताल केतु। अब वो चाहता था बदला लेना कि मैं ऋतध्वज से बदला लूंगा और बदला लूंगा, इसका सर्वस्व नाश करूंगा, इसका सर्वस्व नाश करके ही मैं बदला लूंगा। तो वो एक कपटपूर्वक एक ऋषि का रूप धारण करके वो नदी के किनारे रहने लगा। एक दिन ये थे संत सेवी, ऋतध्वज भी बहुत संत सेवा करते थे, मदालसा जी बहुत संत सेवी थी और ब्राह्मण भक्त थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्ता थी, तो ये भगवान की आराधना किया करती थी और ऋतध्वज को भी संत सेवा करने के लिए प्रेरित किया करती थी। अब इन्होंने नदी के किनारे एक संत के आश्रम देखा। संत की जो भी सेवा होती थी ऋतध्वज जी जा जा करके करते थे। तो इनसे पूछा कि भाई क्या सेवा कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, मेरी सेवा है, अब जिस मेरा भी संध्यापन उपासना का समय है, यहाँ पे राक्षस आके बड़ा हमें दुखी करते हैं, आप ऐसा कीजिए जब तक मैं अपना नित्य कर्म करके आऊँ आप मेरी कुटिया पर पहरा दीजिए। अब कुटिया का संरक्षण करेंगे तो राक्षस यहाँ पे कुटिया पे जितना भी यज्ञ सामग्री है उसको वो ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। बोला जी ठीक है, आप करके आइए। ये नदी में उतरा, नदी में उतरते ये नदी के द्वारा ही वहीं से अदृश्य होकर के ये पहुँच गया ऋतध्वज के महल में। ऋतध्वज के महल में जाकर इसने कह दिया कि हाँ, और इसने ऋतध्वज से अपना हार ले लिया था, एक जो गले में वो हार पहन के रखते थे, कि आप मुझे हार दे सकते हैं क्या? साधु उसको कौन मना करे, इन्होंने उतार के तुरंत दे दिया, लो महाराज आपसे क्या है। तो ये लेकर के वो हार इन्होंने राजमहल में दिखा दिया कि देखो वो तो युद्ध में रक्षा करते हुए हमारी रक्षा करते हुए राक्षसों के साथ युद्ध में मारा गया ऋतध्वज। मदालसा ने ये बात सुनी कि मारा गया, हार देखा, तो उन्हें वो उनका वियोग सहन नहीं हुआ अपने पति का और उन्होंने तुरंत प्राण छोड़ दिए। शरीर छूट गया, प्राण निकल गए, उनका संस्कार हो गया। ये सारा संस्कार करा के वहाँ से वापस आई ऋतध्वज के पास। ये जैसे ही ऋतध्वज के पास आए और ये बड़े प्रसन्न थे, इसने अपना रूप प्रकट किया और इसने बता दिया कि तेरा ऐसे ऐसे कर चुका हूँ, अब तुझे मारने का मेरा प्लान है। अब इसको ताल केतु को ख़त्म करके मार करके ऋतध्वज अपने महल में पहुँचा। महल में जाके इसने देखा कि मदालसा तो मर चुकी है। इसे बड़ा दुख हुआ और इसे लगा कि वो मेरी कि मैंने शरीर छोड़ दिया है, इस मेरे वियोग में उसने प्राण त्याग दिए हैं, पर मैं प्राण नहीं त्याग पा रहा हूँ, क्या मेरा कैसा प्रेम है उसके प्रति। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं उसके वियोग में ही रहूँगा और उसके जो कार्य शेष हैं साधु सेवा और भगवत सेवा वो मैं करता रहूँगा और आजीवन मैं सिर्फ उसी के लिए जीवित रहूँगा, मैं कोई विवाह नहीं करूँगा उसको छोड़कर। नित्य प्रति वो उसका स्मरण करते थे और वो संत सेवा और भगवत सेवा में निरंतर अपना जीवन यापन करने लगे। इसी बीच उनके दो मित्र बने, ये नाग राजकुमार थे। नाग राजकुमार आते थे और इनसे मित्रता, बड़ी मित्रता हो गई और दोनों जो नाग कुमार थे ये बड़े प्रसन्न रहते थे इसके पास। वो नागलोक को एक बार गए और अपने पिताजी को उन्होंने सारा वृतांत बताया। जो ये अश्वतर राजा थे नागों के, अश्वतर के ये दो पुत्र थे नाग कुमार, उन्होंने अश्वतर को सारी घटना बताई कि पिताजी ऐसे ऐसे एक पृथ्वी पर राजकुमार हैं जो स्वभाव में भी, शील में भी और धर्म में भी उसके समान पृथ्वी पर हमें नहीं लगता कोई है। तो वो ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि आपके मित्र हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि उसकी कोई कामना हो जिसकी सिद्धि हम कर सकें तो उससे पूछना। उन्हें कहा, महाराज पिताश्री, उनकी कामना को ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकते हैं। बोले, ऐसी क्या कामना है? उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी मदालसा को चाहते हैं, पर उसकी मृत्यु हो गई है, वो वापस तो आ नहीं सकती, ये तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते हैं और कोई नहीं। तो कहने लगे कि हम प्रयत्न करते हैं उसके लिए। तो अश्वतर, देखो, अपने पुत्रों के मित्र की कार्य सिद्धि के लिए ये तप करने लगे अब कि अगर वो इतना धर्मशील पुरुष है तो उसके लिए हम तप करेंगे। और ये कैलाश पर्वत पे जाके इन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। इन्होंने भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि जी, ऐसे ऐसे मैं मदालसा को चाहता हूँ, जो वृत्तध्वज की पत्नी थी, वो मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो और मैं उसका विवाह वृत्तध्वज से दोबारा करना चाहता हूँ। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके नाग का जो फण है उनके मध्य से मदालसा जी प्रकट हुई, बहुत सुंदर, वो देख करके कि मेरी पुत्री रूप में क्या सुंदर कन्या प्रकट हुई है। और उन्होंने अपने नाग लोक में लड़की को पालन पोषण किया, लड़की जवान हुई और अपने पुत्रों को कहा कि अपने मित्र को बुला के लाओ। जब लड़की जवान हुई, ऋतध्वज राज्य कर रहे थे, उन्हें तो वो तो भूल भी चुके थे कि कभी मैं मदालसा से दोबारा मिल पाऊंगा, बस उसका नित्य स्मरण किया करते थे और उसी के निमित्त संत और भगवत सेवा किया करते। एक दिन नागकुमारों ने उन्हें अपने लोक में आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद में उनके पिताजी ने मदालसा को बुलाया। मदालसा को देख करके ऋतध्वज आश्चर्यचकित हुए कि मेरी पत्नी, ये तो मेरी पत्नी है। तो नागराज ने कहा, हाँ, ये अवश्य तुम्हारी पत्नी है, पर मेरी बेटी के रूप में भी प्रकट हुई है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसका पाणि ग्रहण करो, इससे विवाह करो। तो ऋतध्वज ने प्रसन्नता से मदालसा से फिर से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात ये उसे लेकर के अपने राजमहल में आए। राजमहल में आए और इन्होंने यहाँ से शुरू किया कि अब हम सिवाय भगवत प्राप्ति के हमारा लक्ष्य कुछ नहीं होगा। ये मदालसा का था कि मदालसा ये चाहती थी कि भगवत प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य हो जीवन का, परंतु आगे अपना वंश भी चलाना है। तो ऋतध्वज चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सुंदर पुत्र हो जो मेरा सारा राजमहल संभाल ले, सारी प्रजा का पालन करे और मैं फिर भगवत प्राप्ति की ओर चला जाऊं। लेकिन मदालसा जी पुत्र चाहती थी, पर इसके लिए कि यदि हमारा कोई पुत्र भी हो तो वो भी भगवत भक्त हो। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा मतभेद था। तो यही कहानी हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि उनके कैसे पुत्र होते हैं, ये कैसी माँ है कि जो अपने पुत्रों को, जो आगे जो भी पुत्र होंगे उन्हें किस तरह से संन्यास में लगा देती है, और फिर पिता जो ऋतध्वज जी हैं वो किस तरीके से चाहते हैं कि मेरे पुत्र कैसे राज्य संभाले, और ये मतभेद कैसे इनका सॉल्यूशन निकलता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।